नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यरूशलम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गए हमारे विशेष संवाददाता धीरज काकड़िया की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय इजराइल दौरे का दूसरा और आखिरी दिन आज जेरूसलम में शुरू हुआ याद वशेम की मुलाकात से। याद वशेम एक मेमोरियल है, वो उनकी याद में बनाया गया है जो नाजी हमले में मारे गए यहूदी थे। याद वशेम की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री सीधे ही राष्ट्रपति के कार्यालय पहुंचे। इजराइल के राष्ट्रपति श्री आइजेक हरगोव के साथ द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर करीब 15 से 20 मिनट बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के गार्डन में एक पौधा लगाया
और अब तक हमारे दोनों साइड के अधिकारियों के बीच और दोनों सरकारों के बीच पिछले कुछ समय में जो जो बातें हुई है वो सारी डॉक्यूमेंटेड होगी और इस डेलीगेशन लेवल की बातचीत के बाद MOUs पर भी साइन होने वाले हैं।
इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल की संसद क्नेसेट को संबोधित किया। इसराइल की संसद को संबोधित करने वाले श्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत मजबूती और विश्वास से इसराइल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री के भाषण की क्नेसेट के सांसदों ने कई बार प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने में योगदान के लिए इसराइल की संसद के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले वे पहले नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वे इस मंच पर यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले विश्व नेता और राजनेता बन गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कृत्रिम सामग्री का निर्माण उस व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए जिसका चेहरा, आवाज या व्यक्तित्व सामग्री बनाने में इस्तेमाल किया गया हो। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन में कही। श्री वैष्णव ने कहा कि अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराध के खिलाफ सक्रिय कदम उठाएं। निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन आज से 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान अगले महीने की 16 तारीख को होगा। महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु में 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, ओडिशा में 4, असम में 3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 तथा हिमाचल प्रदेश में 1 सीट के लिए मतदान होगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। मारे गए माओवादियों से 3 राइफल और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव ने बताया कि बीजापुर के इंद्रावती नदी क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने तलाश अभियान शुरू किया था। यह अभियान जारी है। भारत ने जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। 23 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में भारत ने पाकिस्तान पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं से बिल्कुल विपरीत है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने कहा कि भारत इन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का निरंतर दुष्प्रचार अब ईर्ष्या से भरा हुआ है। सुश्री सिंह ने भारत के रुख को दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि इस क्षेत्र से संबंधित एकमात्र लंबित विवाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर का विकास बजट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान द्वारा मांगे गए हालिया राहत पैक दोगुने से भी अधिक है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आम और विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत का हवाला देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने आतंकवाद और हिंसा की विचारधारा नकार दिया है और लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। सुश्री सिंह ने पाकिस्तान पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद के माध्यम से इस क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए प्रयास करने का आरोप लगाया।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।